मेरी आवाज पीछे तक नहीं पहुंचेगी तो फिर थोड़ा आप लोग आगे आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीन तारणं। आराधयो भगवान व्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम लं प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मदमिदाम तत्रादरो नापरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिंध वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से आप सभी वैष्णवजन वैष्णवीस माता जी इसका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आज के इस भागवतम कथा में। तो कई दिनों से प्रसंग चल रहा है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। तो जो नए भक्त हैं या जो पहले नहीं सुने हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ कि ये जो भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रहलाद द्वारा जो प्रार्थना किया जा रहा है ये आठवें श्लोक से प्रारंभ हुआ है। इस अध्याय में स्कंद सात और अध्याय नौ और आज का जो श्लोक संख्या है वो 30 है, लेकिन प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं वो आठवें श्लोक से आप सुनते आ रहे हैं। तो आठवें श्लोक से प्रहलाद महाराज कैसे प्रार्थनाएं करते हैं है ना, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्व एकातन गतयो वत्साम प्रवाहे नर आदितुम पुर गुणैर अधुनापि प्रपो किम तोष्टुम अर्हति समय हरे उग्र जाते। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 8 से 12 श्लोक तक अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहे हैं और भगवान नरसिंह के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके सामने प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूं, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं। तो 8 से 12 श्लोक तक अपनी दैन्यता को प्रकट करते हैं और 13वें से 14वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध को त्याग दें, अपने क्रोध को त्याग दें। और 15वें से 22वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपके इस भयानक रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूं अपितु इस भौतिक संसार में अपनी जो मेरी स्थिति है उससे मैं बहुत अधिक भयभीत हूं। वह क्षण कब होगा जब आप मुझको अपने पद कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। हे भगवान, मैं तो काल चक्र के द्वारा पिसा जा रहा हूं, काल चक्र के द्वारा पिसा जा रहा हूं, अतः मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं, पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं, अतः आप मुझे अपने पाद पद्मों का संरक्षण प्रदान करें। तो ये प्रार्थना जो है 15 से 22वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज करते हैं कि मेरे को आप अपने पाद पद्मों का आश्रय प्रदान करें। 23 से 25 श्लोक तक प्रहलाद महाराज अपने अनुभव का बता रहे हैं, अनुभव को बता रहे हैं भगवान को, कह रहे हैं कि सामान्यतः लोग दीर्घ आयु ऐश्वर्य और भोग के लिए उच्च लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों को अच्छे से देख लिया है, इन सबको देख लिया है। मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे और इतना होते हुए भी एक क्षण में आपने उनका ध्वस्त कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया, एक क्षण में ध्वस्त कर दिया। हे भगवान, मुझे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य सारे सुखों का अनुभव हो चुका है। 5 वर्ष के बालक हैं और कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे भोग जो हैं, भौतिक भोग, उनका अनुभव हो चुका है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हो, इन सब भोगों को नष्ट कर देते हो। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इनको लेना नहीं चाहता। अब अनुभव हो गया ना, तो मैं इन भोगों में मेरी रुचि नहीं है, मैं इनको लेना नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें, शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें और उनकी सेवा करने दें। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। 5 वर्ष के प्रहलाद को यह सब अनुभव हो चुका है। और 26 से 29वें श्लोक में, इन 4 श्लोकों में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझ जैसे घोर नारकीय तमोगुणी परिवार में उत्पन्न होने पर भी अपना हस्तकमल मेरे सिर पर रखा है, और ऐसी कृपा तो कभी भी आपने ब्रह्मा जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर और लक्ष्मी जी के ऊपर भी आपने नहीं की। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह किसी से भेदभाव नहीं करते, अपितु आप सेवा के स्तर के अनुसार कल्प वृक्ष के समान सबको फल प्रदान करते हैं। मैं तो सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, अतः मैं अब उनकी सेवा करना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे बचाने तथा मेरे पिता को मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए ही यह कर्म किया है। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आपने ये कार्य किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। और ये अभी तक का हमने समराइज कर दिया 8वें श्लोक से 29वें श्लोक तक, और आज का जो श्लोक है वो है 30वां श्लोक, उसको हम जो है अब चलते हैं 30वें श्लोक पे। तो 30वां श्लोक में इसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एकस्त्वमेव जगते तामुष्ययत्वास, आद्य अन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च, सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम्, नानेव तैर अवसितास्तद अनुप्रविष्टः, एकस्त्वमेव जगत एताम अमुष्ययत्वाम्, आद्य अन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च, सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम्, नानेव तैरवसितास्तद अनुप्रविष्टः, बोलिए। एकस्त्वमेव जगदम् एतामुष्ययत्वाम्, आद्यान्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाय एधाम् नाने वते अवितास्तत अनुप्रविष्टा शुभ कृष्ण प्रभु एकस्त्वमेव जगत एताम् शयत्वाम् आद्यन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाय एधाम् नानेव तैरवसितास्तदनुप्रविष्टा एकस्त्वमेव जगदे ममोषयत्वम् आद्यन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाय एधाम् नैनावतैरवसितास्तदनुप्रविष्ट माताएं एकस्त्वमेव जगदेतामवश्यत्वाम् चलिए एक एक त्वम तुम एव एकमात्र जगत दृश्य जगत एतम यह अमुष्य उस समग्र ब्रह्मांड का यत चूंकि त्वम तुम आदि प्रारंभ में अंतयो अंत में पृथक अलग से अवस्यासी विद्यमान हो कारण रूप में मध्यता च बीच में भी आदि तथा अंत के मध्य में सृष्ट्वा उत्पन्न करके गुण व्यतिकरम प्रकृति के तीन गुणों का रूपांतर निज माया अपनी निजी बहिरंगा शक्ति से इदम यह नाना एव अनेक किस्मों की तरह तय उनके गुणों के द्वारा अवस्थितः किया अनुभव किया तत् वह अनुप्रविष्टः प्रवेश करके अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय अनुवाद हे भगवान अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं यह सब प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप हैं तात्पर्य जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है एकोपि यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चया यदन्ता अण्डानतरः परमाणु चयान्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषां तमां भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूं जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस जगत के परे रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में भी हुई है। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, फिर भी वे सृजन पालन तथा संहार से परे पृथक रहते हैं। भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। चूंकि शक्ति तथा शक्तिमान एक है, अतएव सारी वस्तुएं एक हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अतएव पर ब्रह्म या कृष्ण के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का यही अंतर है। उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में, किंतु अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है। अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती वह भौतिक कहलाती है। अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है, इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्त्वमेव तुम एव जगद एतम, आप सब कुछ हैं। यहाँ ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। तो इस प्रसंग में, आज के इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जो है भगवान को कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एकस्त्वम एव जगद एतम अमुष्य यत्वस यत्वम आद्यन्तो पृथक वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरणं निज माया या एदम नानेव तैर अवस्थितस् तद अनुप्रविष्ठा। हे भगवान, केवल आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि जो सृष्टि है, ये जो भौतिक जगत है, ये आप ही हैं, आप ही के द्वारा ही ये प्रकट है और माया के तीन गुणों के द्वारा इसके सारे क्रियाकलाप चलते हैं। श्रीमद् भागवतम में चतुर्श्लोकी भागवतम का जो प्रथम वर्ष है उसमें भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, अहम एवासम अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम पश्चात अहम यत् एतच्च यो विशिष्यते सो अस्मि अहम्। ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं वही भगवान हूं जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जब ये प्रकृति भौतिक स्वरूप प्रकृति भी विद्यमान नहीं थी और संहार के बाद भी केवल जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा। तो इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान भी श्रीमद् भागवतम में करते हैं और यही बात जो है यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं। और प्रहलाद प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया तदम विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेषा अवस्थिता। तो भगवान ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के रूपकोपों से प्रकट होते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर शिरोदक्षाई विष्णु जो है हर परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, एकोपि यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम, कि आप एक हैं और आपसे जगत प्रकट होते हैं, कितने कोटि करोड़ों जगत आपसे प्रकट होते हैं। यह शक्ति रस्ती जगदंडा चया यदंता, और आपकी जो है शक्ति से ये सारे भौतिक प्रकृति जो है जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं उससे ब्रह्मांड का कार्यकलाप चलता है और आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करने के बाद भी ब्रह्मांड कहीं समाप्त नहीं होते या भगवान की शक्ति कहीं समाप्त नहीं होती। ओम पूर्णमदा पूर्णमेदाम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाया पूर्णम एव अवश्यते, कि भगवान सारा कुछ प्रकट करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ समाप्त नहीं होता। तो वैसे एक बात समझने की है कि भगवान कहते हैं कि मैं सब ब्रह्मांडों को प्रकट भी करता हूँ लेकिन इनको प्रकट करने के बाद और सब परमाणु तक में मैं हूँ और फिर भी मैं उससे अलग रहता हूँ, उससे अलग रहते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए और फिर भगवान का जो है गोलोक धाम खाली है, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने निज धाम में हमेशा रहते हैं। गॉड इज एवरीथिंग, एक कहते हैं आचार्य लोग, गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नॉट गॉड, अचिंत्य भेद अभेद, इसको समझना चाहिए कि भगवान से ही सब प्रकट होता है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। तो ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड हमारा ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड में अभी हम रहते हैं है ना, उसके बारे में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इसी ब्रह्मांड के हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं लेकिन प्रहलाद महाराज हमारा ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है। इसका रेडियस मालूम है आपको, कितना साइज है इसका, कितना लेंथ है इसकी? यस 400 करोड़, 50,000 योजन, 50,000 योजन इंटू 8 उसको माइल्स आ जाएंगे, 400 करोड़ माइल्स। और किलोमीटर में जानना चाहते हैं तो फिर 600 करोड़ किलोमीटर। और ये हमारा ब्रह्मांड जिसमें आप और हम रहते हैं, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और हमारे ब्रह्मा जी कितने मुख वाले हैं? 4 मुख वाले, सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा। और इसमें, इसी ब्रह्मांड में सप्त द्वीप हैं, है ना, और हम कौन से द्वीप में हैं? जंबो द्वीप में। जंबो द्वीप में 9 वर्ष हैं और हम कौन से वर्ष में हैं? भारत वर्ष में। और प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह कौन से वर्ष में हैं? हरि वर्ष, हरि वर्ष में। तो आज भी प्रहलाद महाराज वहां के हरि वर्ष के वासियों के साथ और अपने सेवकों के साथ भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक के द्वारा पूजा करते हैं, तो आप और हम भी उस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। अगर वो श्लोक डिस्प्ले हो सकता है बोर्ड पे तो बहुत अच्छी बात है। कोई है यहाँ करने वाला? प्रभु जी 5:18-8 आप और हम सभी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। पांच अठारह आठ नहीं दिख रहा? हाँ चलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूं, जब तक है ना आप मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, ठीक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर आविर भवा वज्र नख वज्र दृष्ट कर्म आशायान रंधये रंधये तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इस वचन से, इस श्लोक से प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। अगर आ जाता है तो एक दफा ठीक है। आ गया, वेरी नाइस। आज आज भगवान ने कृपा की है कि शुभ कृष्ण प्रभु को हमारे पास भेजा है। नरसिंह भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि आज चलिए आपको श्लोक का जो है भक्तों से उच्चारण करवाना। बोलो हरि बोल। वेरी नाइस टेक्स्ट आउट। चलिए आप एक दफा पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे, आविर आविर भव वज्र नख वज्र दंष्ट कर्म आशायान रंधया रंधया तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से है, वैसे मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ देता हूं। ओम मतलब हे ईश्वर, नमः मतलब सादर नमस्कार है भगवते भगवान को, नरसिंह आया नरसिंह नाम से विख्यात, नमः नमस्कार है तेज तेजसे समस्त तेजों के तेज, अविर अविर भवा कृपया पूर्ण रूप से प्रकट करें, अपने तेज को पूर्ण रूप से प्रकट करें, वज्र नख वज के समान नखों वाले, वज्र दंष्ट व्रज के समान दांतों वाले, कर्म आशायान भौतिक कर्मों के द्वारा सुखी रहने की आसुरी इच्छाएं, रंधय रंधय कृपा परास्त करें, तमहा अज्ञान ग्रस दूर करें ग्रस दूर करें, ओम हे ईश्वर स्वाहा सादर आहुति, अभयम निर्भीकता, अभयम निर्भीकता आत्मनि मेरे मन में, भूष्टा आप प्रकट हों, ओम श्रोम, ये नरसिंह स्तुति का बीज मंत्र है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें। आप हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये स्तुति कर रहे हैं। और इसमें हम जो है श्लोक को लेकर के इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे, और वो चर्चा ये है कि ये हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड जो है तब तक गतिशील नहीं होता, क्रियाशील नहीं होता, जब तक परमात्मा रूप में भगवान उस ब्रह्मांड में प्रवेश ना कर जाए। ब्रह्मांड में भगवान जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही ये गतिशील क्रियाशील हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा, वैसे ही भौतिक जो जीव है उसकी देह में आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मांड में परमात्मा जिस प्रकार से क्रियाशील होते हैं ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा होती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रभुपाद, और इसमें श्लोक के अंत में आया है अनुप्रविष्टः, अवस्थिता अनुभव किया तत्व है अनुप्रविष्टः। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो भगवान है इसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। जिस प्रकार से जीवात्मा मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, देखिए साइंटिस्ट लोग जो है ना उनकी विद्या या उनकी फिलॉसफी अलग है और वो गलत है। प्रभुपाद कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि शरीर के बनने के बाद जीवात्मा उसमें प्रवेश करता, और प्रभुपाद इसका बहुत जोर से खंडन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल गलत है, पहले पहले दिन जीवात्मा मां के उदर में प्रवेश करता और उसके बाद शरीर की रचना होती है। अगर जीवात्मा नहीं है तो शरीर की रचना संभव नहीं है, शरीर की रचना संभव नहीं है। तो जीवात्मा था एक समय लेकिन शरीर नहीं था, उसने मां के गर्भ का आश्रय ले रखा था, और शरीर छूटने के बाद भी जीवात्मा रहेगा। कितना सिंपल फिलॉसफी है, कितना सरल है इस बात को समझ लेना कि शरीर बाद में बना लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस शरीर होने से पहले से थी, है ना। तो कपिल भगवान जो है देहूति को, माता देहूति को बड़ा सुंदर श्लोक है ना, क्या कहते हैं, कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपतये, कि कर्म फल के अनुसार और भगवान की अध्यक्षता में, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान की अध्यक्षता में और कर्मों के फल के अनुसार सबको शरीर प्राप्त कराया जाता है। जंतुर जीव को देह उपपतये, देह को प्राप्त कराया जाता है कि कौन सा देह इसको प्राप्त होना है। स्त्रिया प्रविष्टा उदरम, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है जीव, कैसे, उदरम पुंसो रेत कण आशया, पुरुष के वीर्य कण के द्वारा उसका आश्रय लेकर के जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता। जिस प्रकार जीवात्मा आश्रय ले लेता है और उसके बाद जो है फिर शरीर की रचना होती है, शरीर का विकास होता है और आप जानते हैं कि किस प्रकार से शरीर जो है 7 महीने में बन करके तैयार हो जाता है, फिर उसको भूख प्यास लगती है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। महाविष्णु के रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो है निकलते रहते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तभी ब्रह्मांड जो है क्रियाशील होता है। और इसी प्रकार से जो है फिर परमाणु रूप में भी जो है वहां पर भगवान प्रस्तुत रहते हैं। तो लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि जब कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, तो फिर भगवान ही सब कुछ है तो सब चीजों को भगवान मान लिया जाए, सब वस्तुओं को भगवान मान लिया जाए। लेकिन यहां पर प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते नहीं, जैसे अथोराइज्ड जो एक वस्तु होती है जिसको अथोराइज किया जाता है, वहीं आप भगवान को स्तुति कर सकते हैं, भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में एक पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत सारे बॉक्स हैं, आप किसी भी बॉक्स में लेटर डाल देंगे तो क्या वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। जो पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा अथोराइज्ड है ना, उसमें जब आप लेटर डालेंगे तो फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए सब बॉक्स जो है पोस्ट बॉक्स नहीं हो सकते जो अथोराइज्ड है। इसी प्रकार से हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो फिर हमारे पास भगवान ने क्या दिए हैं, अर्च विग्रह दिए हैं ना, अर्च विग्रह से कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली भगवान से हर वस्तु प्रकट होती है, लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं होती, है ना। जैसे माइक है, माइक एक मटेरियल, एक प्रोडक्ट है, है ना, मटेरियल प्रोडक्ट है। लेकिन जब इसको आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। और यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में कि दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है, अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जब व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको सब कुछ सब में भगवान दिखता है, फिर उसको भौतिक अभिव्यक्ति नहीं होती। जब तक हम भगवान को भूल करके भोग करना चाहते हैं तब हम समझते हैं कि भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है और हम अलग हैं, हम अलग हैं। तो सेपरेटेड एनर्जी जो है, भूमिर आपो, जो जितने भी हैं, ये भगवान कहते हैं मेरी भिन्न प्रकृति है, लेकिन भिन्न प्रकृति होते हुए भी ये भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का ही है। तो जब हम उसको भिन्न मान करके चलते हैं तो वो एक स्टेज है, लेकिन जब उसमें भी हम भगवान को देखते हैं, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश, सब ठाकुर जी का दिया हुआ, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी की नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी हमको समझना है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। तो ये इस श्लोक का जो है तात्पर्य हम यहाँ पर समझ पाए हैं। तो आज हमारे बीच में शुभ कृष्ण प्रभु हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमसे, हम तो मैं है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर अगर प्रकाश डालेंगे तो हम सबको लाभ होगा। माइक है तो दीजिए, माइक नहीं है, प्रभु हम सब मिलकर के एक ही परिवार के हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि भाई हम भी तो आपसे कुछ सीखेंगे ना, कहाँ मौका मिलता है हमको।
Yeah.
चलेगा। अब वैसे ही बताइए,
मैं केवल अचिंता भेदाभेद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, वस्तु, कोई वस्तु जब किसी वस्तु पे आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसका अभेद होता है, यद्यपि सामान्यतः भेद दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे भी आपने बताया कि ये भगवान कहते हैं कि जगत उनकी भिन्न शक्ति है अर्थात अचेतन है और भगवान सचेतन है, तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि यह अभेद कैसे हुआ, हमें तो भेद दिखाई पड़ रहा है। तो उसको धारण की तरह समझना चाहिए कि जैसे देखिए बादल है, बादल में तेज बिल्कुल नहीं होता है, बादल में केवल पानी होता है और कुछ हवा रहती है, और सूर्य में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य के ऊपर आश्रित है इसलिए बादल का सूर्य से अभेद कहा जाएगा। बादल सूर्य के बिना नहीं हो सकता, लेकिन स्वरूपतः देखें तो बादल और सूर्य में बिल्कुल भेद है। तो उसी तरह स्वरूपतः देखें तो जो माया है, जो जगत है, वो अचेत है, असत है, निरानंद है, लेकिन भगवान सच्चिदानंद है। लेकिन क्योंकि जगत और कहीं से नहीं आया है, जिसमें यहाँ पे लिखा है निज माया इदम इदम, इस जगत को अपनी ही माया से भगवान प्रकट करते हैं गुणों के द्वारा, ये भगवान पे आश्रित है, इस दृष्टि से इसका भेद है। ये बात खाली मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप बताइए अच्छे से। ठीक है,
ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बात पूछना चाहता है, तो आज आपके मन में कोई शंका है, कोई बात समझना चाहते हैं, प्रभु जी को दीजिए। पीछे माइक, आपके पीछे इधर आ जाए।
इसमें एक सेंटेंस में लिखा हुआ था कि जिस वस्तु पर या जिस चीज पर भगवान का इफेक्ट नहीं होता वो भौतिक के ग्रेड में आता है, इसका क्या तात्पर्य हुआ?
जिस वस्तु
या चीज पर
हाँ
भगवान की शक्ति का इफेक्ट नहीं होता वो भौतिकता में आता है, वो भौतिक शक्ति में आता है, लिखा हुआ है।
हाँ, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं तात्पर्य में के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का अंतर यही है कि उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है, फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है। अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। ठीक है ना, यही प्रश्न है ना आपका। जैसे उच्च स्तर पर, जैसे हमारी बॉडी है, आज हम अपनी बॉडी को क्या मानते हैं, भौतिक मानते हैं कि आध्यात्मिक मानते हैं? भौतिक मानते हैं। अगर ये जो शरीर है अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को अगर आप आग में डाल करके रखें, आग में डाल करके रखेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, उस रॉड में सारे आग के गुण प्रकट हो जाएंगे। जो कार्य आग कर सकती है वही कार्य वो रॉड कर सकती है। तो जो जब हमारी वो स्थिति हो जाती है, उच्च स्थिति हो जाती है, फिर हमारे को कोई चीज भौतिक नहीं लगती।
हरि बोल। अच्छा, अभी जैसे सुना समझे कि सब आध्यात्मिक शक्ति पर ही भौतिक शक्ति है, उसके बिना भौतिक का कोई वैल्यू नहीं रहता, संचारित आध्यात्मिक शक्ति से ही होता है। किंतु ये जो सोच है या जो मनन है वो हर समय नहीं रहता, बीच बीच में हम लोग डगमगा जाते हैं या इधर उधर पथभ्रष्ट हो जाते हैं और भौतिक शक्ति के आवरण में आके उस ओर इफेक्टेड हो जाते हैं। इसका क्या उपाय है?
उपाय इसका एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उस अग्नि के समान है जिसमें आप अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे आयरन की रॉड आग में समर्पित की जाती है और उसमें आग के गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान और भगवान का नाम जो है अभिन्न है। जैसे ही जीवात्मा भगवान के नाम के आश्रय में आ जाता है, उसी तरह उसके सारे संसार के चिंतन कार्यकलाप और ये सब चीज़ें उसे मुक्त हो जाता है। और ये अभ्यास से होता है, आपको प्रतिदिन श्रवण करना है, प्रतिदिन हरिनाम करना है, करते 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 हम उस स्थिति तक पहुँच सकते हैं। हरे कृष्ण
हरि बोल हरि बोल
जी।
हरे कृष्ण प्रभु, हमारे गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बिजनेसमैन होता है, उसका वो मालिक होता है कंपनी का और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काम करते हैं, वो खुद मालिक खेल खेलता है स्पोर्ट में, लेकिन उसका पैसे से वो दूसरे से काम कराता है, तो वो शक्ति तो उसकी है, मतलब पैसा देख के काम कराता है, तो शक्ति अनशक्तिमान अलग नहीं है।
बिल्कुल
वो एग्जांपल दिया,
बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति की 100 फैक्ट्री हो सकती हैं, लेकिन वो एक साथ 100 फैक्ट्रियों में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, लेकिन वो कार्य जो है वो करा रहा है ना। जैसे भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, एक जगह रहता है लेकिन पूरा देश उसके। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया।
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण ठीक है, तो यहाँ हम विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की